हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जहाँ अमित द्वारा आयोजित पार्टी का अनुमान लगभग 3 करोड़ रुपए था, वहीं तारा के सुझाव से पार्टी का अनुमान केवल 40 से 50 लाख रुपए रह गया। इन दरों में जमीन आसमान का अंतर था। तारा के विचार को सभी ने तुरंत स्वीकृत कर लिया और जोरदार तालियों से उसका स्वागत किया। काली शक्तियों के स्वामी अमित क्रोध से भर गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि तारा के सामने उसकी इतनी बेइज्जती होगी। वहीं अमन मन ही मन अपनी पत्नी तारा को देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसे तारा की समझदारी पर गर्व होने लगा था। अमन का दिल चाह रहा था कि वो सबके सामने तारा को चूमे, लेकिन वो अपने भावों पर नियंत्रण रखे हुए बैठा रहा। जल्दी ही सभी अमन के केबिन से बाहर चले गए, लेकिन तारा वहीं रुक गई। तारा जानती थी कि अमन उससे कुछ कहना चाहेंगे। जैसे ही सभी अमन के कमरे से बाहर गए, अमन ने तारा को कसकर गले लगा लिया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारे इस दिमाग में दिमाग भी है, उसने थोड़े मजाकिया लहजे में कहा था। अमन की बात सुनकर तारा उसे शिकायत भरी नज़रों से देखने लगी, लेकिन अगले ही पल अमन बच्चों की तरह अपने कान पकड़ते हुए तारा को मनाने लगा और बोला, सॉरी, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन मानना पड़ेगा, वाकई तुम्हारे पास बहुत तेज दिमाग है और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम हर जगह, हर पल, हर चीज में मेरे साथ हो। ऐसा कहकर उसने प्यार से उसे गले लगा लिया। वहीं अमित अपनी काली शक्तियों द्वारा दोनों की बातचीत सुन रहा था। अमन का तारा को गले लगाना उसे बहुत बुरा लग रहा था। हालांकि वो अमन के केबिन में नहीं था, लेकिन अपनी काली शक्तियों से वो वहां मौजूद था। अमित गुस्से से मल्लिका के पास आया और उसकी मेज पर मुक्का मारते हुए बोला, वो कोड़ी की लड़की, मामूली इंसान, मेरे सामने केवल एक कीड़े की भांति है। आखिर वो अपने आप को क्या समझती है? आज उसकी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई है कि मैं सोच भी नहीं सकता। अमित गुस्से से कांपने लगा। गुस्से में उसके शरीर की नसें दिखाई देने लगीं। मल्लिका समझ गई थी कि अगर अमित को शांत नहीं किया गया तो वो कोई ना कोई कदम उठा सकता था जो उनके मिशन के लिए सही नहीं था, क्योंकि उन्हें हर हाल में तिलस्मी पत्थर चाहिए था। लेकिन मल्लिका को तिलस्मी पत्थर के साथ साथ अमन का शरीर भी चाहिए था। वहीं अमित का क्रोध चरम पर था। उसने मल्लिका से कहा, पार्टी तो तुमने आयोजित कर ली और सबको मना भी लिया, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम इस पार्टी को कैसे सफल करती हो। जल्दी ही अमित ने मल्लिका के साथ मिलकर कुछ योजनाएं बना ली जो तारा को सबके सामने शर्मिंदा कर सकें, क्योंकि तारा उनकी नज़रों में एक मामूली इंसान थी और मामूली इंसान को हराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर उन्होंने अब तक किसी को अपनी प्राथमिकता पर रखा था तो वो अमन, जिन महाराज थे, लेकिन अब दोनों ने अपना ध्यान अमन से हटाकर तारा पर केंद्रित कर लिया था। अमित ने मल्लिका से कहा, सबसे पहले हम इस मामूली इंसान तारा को अमन की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेंगे और पार्टी के दिन ऐसा कुछ करेंगे कि तारा अमन की नज़रों से गिर जाएगी। कुछ सोचते हुए दोनों बुरी तरह हंसने लगे। वहीं अमित को हराकर तारा को बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि ये उसकी छोटी सी जीत थी, लेकिन आज उसने सबके सामने अमित को उसकी जगह दिखा दी थी और बता दिया था कि अमन को वो बचपन से धोखा देता आया है, वो अब तारा के रहते उसे और ज्यादा धोखा नहीं दे पाएगा। तारा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। तारा अपनी डेस्क पर जाकर अपना काम पूरा करने लगी और उसने जल्दी ही अपना काम खत्म कर लिया, क्योंकि अमन ने कहा था कि आज वो करिश्मा मॉम और उसे कहीं घुमाने ले जाएगा, क्योंकि वे जिन थे उन्हें बाहर आना जाना, लोगों से मिलना जुलना पड़ता था ताकि वे सब लोगों की नज़रों में रहें। अगर वे अकेले रहना शुरू कर देते थे तो कई लोगों की बातों का कारण बन सकते थे। करिश्मा जी यही नहीं चाहती थीं। वो नहीं चाहती थीं कि वे किसी की नज़रों में आएं या उनका बेटा अमन। करिश्मा जी की जिंदगी में उनके बेटे के अलावा कोई नहीं था। अब तारा और उनका बेटा ही उनकी पूरी जिंदगी थे। अपने पति को वो बहुत पहले ही खो चुकी थीं और उनका दूसरा बेटा भी उनके बड़े बेटे अमन में मिल चुका था। इसीलिए करिश्मा जी को अमन की ज्यादा फिक्र रहती थी। इसीलिए वो चाहती थीं कि अमन बाहरी दुनिया में भी घूमे फिरे, अपनी पत्नी को लेकर हर जगह, हर किसी की पार्टी में जाए, चाहे छोटे मोटे फंक्शन ही क्यों न हो, ताकि वे लोगों की नज़रों में बने रहें। अमन की कंपनी शहर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी, इसीलिए अमन का नाम सभी जानते थे। लेकिन अमन ने हमेशा ही खुद को पार्टियों से दूर रखा था, लेकिन अब तारा अमन की जिंदगी में थी, इसीलिए अमन को अब बाहरी दुनिया में भी जाना चाहिए था ये करिश्मा जी का मानना था। वहीं तारा जल्दी अपना काम निपटा चुकी थी और उसने अमन को मैसेज भी कर दिया था कि आज उन्हें करिश्मा मॉम के साथ बाहर जाना है, और कहाँ जाना है इसका प्लान करिश्मा मॉम खुद करेंगी। तारा का मैसेज मिलते ही अमन खुश हो गया और जल्दी ही उसने अपना काम खत्म करके बाकी की मीटिंग्स कैंसिल कर दी, क्योंकि वो तारा द्वारा बनाई गई पार्टी के अनुमान से बहुत खुश था। बात पैसा बचाने की नहीं थी, बात तारा की समझदारी की थी जो अमन को अंदर तक भा गई थी। अमन के दिल में भी तारा के लिए अब गहरे भाव जन्म लेने लगे थे। पहले अमन तारा को पसंद करता था उसकी खूबसूरती के कारण। तारा इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखता ही रह जाता, कोई भी खुद को उसे छूने से रोक नहीं पाता। और अब तारा उसकी जिंदगी में उसकी पत्नी बनकर आ चुकी थी, तो अमन हर रात उसे छूता था क्योंकि उसका खूबसूरत शरीर बहुत आकर्षक था, तो अमन उससे दूर नहीं रह सकता था। लेकिन अमन के दिल में अभी तक तारा के लिए वे भाव नहीं थे जो अब धीरे धीरे जन्म लेने लगे थे। तारा का स्मार्टनेस देखकर अमन का दिल गदगद हो उठा था। धीरे धीरे तारा के लिए उसके दिल में गहरा प्यार होता जा रहा था, लेकिन अभी भी कहीं कुछ कसक सी बाकी थी जो शायद वक्त के साथ ही जाने वाली थी। वहीं तारा को भी इसी बात की चिंता थी कि जब तक उन दोनों के मन में छोटी छोटी कसक रहेंगी तब तक वो मान नहीं बन पाएगी, जिन महाराज ने उसे साफ साफ बता दिया था। इसीलिए तारा भी अमन के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहती थी और उससे प्यार करना चाहती थी। हालांकि राक्षस ने उसके दिलो दिमाग में मर्दों के खिलाफ जहर घोल रखा था, लेकिन जब से वो राधा के पिछले जन्म से आई थी वो एक एक बात समझ चुकी थी। राधा ने उसे राजा से बचने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया था, लेकिन उस राजा ने उसका इस जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ा था। इतना ही नहीं, राजा की माँ भी इस जन्म में मौजूद थी केवल ये देखने के लिए कि तारा उनका बेटा किस तरह बर्बाद करता है। हालांकि वो अमन के जिन के कब्जे में थी, लेकिन वो जब तक चाहे जिंदा रह सकती थी। अमन का ये मानना था कि जब तक ये पिंजरे में कैद रहेगी तो उसके जीने की इच्छा खुद बखुद खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो शक्तिशाली औरत इतनी आसानी से नहीं मरने वाली थी। वो तारा को बर्बाद करके ही जाने वाली थी, और चूंकि अब उसके बेटे का अंश वहाँ आ रहा था जिसका पता उन्हें भी चल चुका था, अब देखना ये था कि वो अंश किस रूप में आता है और किस रूप में आकर तारा के करीब होता है। जल्दी ही अमन ने अपना सारा काम खत्म कर लिया और तारा को लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। अमन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और बार बार प्यार भरी नजरों से तारा की ओर देख रहा था। दिन पर दिन तारा की खूबसूरती निखरती जा रही थी। जब से उसकी अमन से शादी हुई थी, दिन पर दिन वो और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। अमन बार बार नजरें बचाकर तारा को देख रहा था। जैसे ही वे दोनों अपने बंगले के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि करिश्मा जी बाहर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी।
इस तरह से करिश्मा जी को बाहर खड़ा देखकर अमन चौंक गया और जल्दी से गाड़ी से उतरकर उनके पास गया और बोला, क्या हुआ मॉम, आप इस तरह से बाहर क्यों खड़ी हैं? आप अंदर क्यों नहीं गईं? कुछ प्रॉब्लम है क्या? तब करिश्मा जी ने अमन से कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ खड़ी होकर तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। अब तुम दोनों आ ही गए हो, अगर तुम दोनों फ्रेश होना चाहते हो तो फ्रेश हो जाओ, वरना ऐसे ही चलो, क्योंकि मैं तुम दोनों को आज एक खास जगह ले जाने वाली हूँ। ये सुनते ही वे दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तब तारा ने करिश्मा जी से कहा, मॉम मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ। तारा की बात सुनकर करिश्मा जी मुस्कुरा दी और बोली, बेटा आपको तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज आप मेरे पसंद के कपड़े पहनोगी और मैंने वे कपड़े आपके बेड पर रख दिए हैं, तो आप जाइए और चेंज करके आइए। और हाँ, उन कपड़ों के साथ मैंने कुछ ज्वेलरी भी रखी है, वो भी आपको पहननी होगी, ओके? करिश्मा जी ने बहुत प्यार से तारा के गालों को छूते हुए कहा। तारा ने उनकी बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया और मुस्कुराती हुई अंदर चली गई।